मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 28 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले चार दिनों से हम जीवन में किस तरह सफल हों, सफलताएं हासिल करें, किस तरह से बाधाओं को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दें, इस इश्यू पर थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। और आज भी मेरा मन कर रहा है कि मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि यह विषय अपने आप में इतना व्यापक है और सच पूछिए तो इतना गहरा भी है कि इसमें जिंदगी के दूसरे बहुत सारे मामले, समस्याएं, क्षेत्र अपने आप ही समा जाते हैं। यूं कह सकते हैं कि यह सब्जेक्ट अपने आप में एक तरह से ब्लैक होल जैसा है, इसमें आसपास की सारी चीजें आकर के खो जाती हैं। इसी विषय को मैं आज आप सबकी पूर्व अनुमति से फ्रेंड्स आगे बढ़ाना चाहूंगा। और आज मैं अपने विषय को आपके सामने रखने के लिए भगवत गीता का सहारा ले रहा हूं। भगवत गीता, आप सब गीता के बारे में जानते हैं, हम जनरली भगवत गीता नहीं कहते, बोलचाल में हम इसे गीता ही कहते हैं। कभी आप गीता के बारे में सोच कर देखिए तो आपके दिमाग में खलबली मचने लगेगी, और यह जो खलबली मचेगी ना, ये बड़ी सकारात्मक खलबली होगी, बहुत ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस खलबली से आप देखेंगे जैसे कि समुद्र मंथन हो गया हो, बुरी चीजें भी निकल करके बाहर चली गई हैं और अमृत जैसी चीजें भी इसी खलबली से निकलेंगी। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल, और वो सवाल ये कि शुरुआत में ही है कि अर्जुन युद्ध के क्षेत्र से भाग रहा है और कृष्ण के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि लड़ाई शुरू होने वाली है, और जो सबसे बड़ा धनुर्धर है वो कह रहा है कि नहीं, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कृष्ण ने क्या किया, और अंत में हम देखते हैं कि अर्जुन लड़ाई में शामिल हुए और महाभारत का युद्ध जीता भी। तो कृष्ण ने किया क्या, हम बहुत ही सरल तरीके से आइए बात करें, कृष्ण ने किया क्या। कोई कृष्ण ने भभूत दी कि लो ये भभूत चाट लो और देखो तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, या कि कृष्ण ने कहा कि भाई ये पूजा पाठ कर लो, ये तीर्थ यात्रा कर लो, ये टोना टोटका कर लो, ऐसा कुछ किया, या कोई मेडिसिन दे दी, होम्योपैथ की मेडिसिन दे दी हो, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। आप देखते हैं कि पूरे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को केवल समझाने की कोशिश की है। कृष्ण के समझाने का ही ग्रंथ है गीता, जिसे आज हम सब अपने संदर्भ में भी उतना ही तरोताजा और सामयिक पाते हैं कि हमें भी मानो कि कोई समझा रहा हो। इससे एक चीज तो कम से कम सिद्ध हो सकती है और हो ही गई है, और वो ये कि व्यक्ति को अगर बदला जा सकता है तो केवल दो तरीकों से। एक तरीका घटनाएं बदल देती हैं, लेकिन गीता में घटनाओं की चर्चा नहीं है क्योंकि वहां घटना के लिए कोई अवसर ही नहीं था। गीता जो बात कहती है वो ये कि किसी को भी समझा कर बदला जा सकता है, यानी कि अगर हम किसी को सही दिशा दे दे उसकी सोच को, या यूं कह लीजिए कि विचारों में परिवर्तन लाकर उसके पूरे जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे ही उसके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वैसे ही उसके काम करने का तरीका बदल जाता है, और जैसे ही उसके काम करने का तरीका बदलता है वैसे ही उसकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करता है उसी तरीके से उसे उस काम का प्रतिफल मिलता है, सफलता, असफलता, अर्ध सफलता या कोई अन्य सफलता जो भी हो, लेकिन वो सारी चीजें जो मिलती हैं वो काम करने के तरीके से ही मिलती हैं। कम से कम गीता इस बात को तो सिद्ध करती ही है, और सच में मैं उनके निर्णय का अभिनंदन करना चाहूंगा। ये पता नहीं लग पाता है कि यह निर्णय किसने लिया था कि न्यायालय में आप देखिए कि जिस ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती है कि मैं जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा, वह गीता है। हमारे पास रामायण भी है, हमारे पास वेद भी हैं, रामचरितमानस भी है, लेकिन भारतीय मेधा ने जिसे चुना है वह है गीता। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति शपथ ले रहा है, सच्चाई की शपथ ले रहा है, डेफिनेटली उसका संबंध उसके सीधे सीधे विचारों से ही है, और उस विचारों की पवित्रता की बात ही गीता करती है। दोस्तों, शायद मुझे नहीं मालूम कि आपको मालूम है या नहीं, गीता का अंतिम श्लोक क्या है, आइए हम उसे देखें। क्योंकि देखिए, जो अंतिम श्लोक होता है, जब आप किसी भी रचना को समाप्त करते हैं ना, बहुत दुखदायी होता है। आपको लगता है जैसे कि आप अपने ही किसी प्रिय से बिछुड़ रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ रहे हैं। आप उसे टाटा बाय बाय कह रहे हैं जब आप कोई भी चीज लिख रहे होते हैं, और जब आप आखिरी पैरा लिख रहे होते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत द्वंद्व से गुजरना पड़ता है कि मैं कैसे इससे बिछुड़ूं। लेकिन अंततः बिछुड़ना ही पड़ता है, और इसीलिए लास्ट पैरा में ये कोशिश की जाती है कि पहले जो कुछ भी कहा गया है उसका निचोड़ डाल दिया जाए, उसका सार प्रस्तुत कर दिया जाए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मैं गीता का अंतिम श्लोक आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आखिरी श्लोक। इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि उसमें गीता का कोई निचोड़ हो और वह निचोड़ हम सब आपके काम आ जाए। तो देखिए क्या कहा गया है, और यह बात बकायदे संजय ही धृतराष्ट्र से कह रहा है, और पूरे के पूरे निष्कर्ष के रूप में कह रहा है कि महाभारत का जो युद्ध होगा या हो रहा है या हो चुका है, उसका निचोड़ क्या है, क्या होने जा रहा है, और जो होने जा रहा है वो क्यों ऐसा होने जा रहा है। तो संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र यानी कि जहां भी योगेश, योग के स्वामी मतलब बिल्कुल स्थिर मन के व्यक्ति कृष्ण है। मैंने व्यक्ति कहा, माफी चाहूंगा, आप भगवान कह सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां वो एक दार्शनिक के रूप में है इसलिए मैंने जानबूझकर व्यक्ति कहा है। यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां भी योगी कृष्ण हो या कोई भी कृष्ण के समान योगी हो, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहां पार्थ हो अर्जुन, अर्जुन के समान धनुषधारी हो, वीर हो, यानी कि दो लोग कृष्ण के समान योगी जिसका मन बिल्कुल स्थिर है, और अर्जुन के समान धनुर्धारी यानी कि कर्म योगी, जो कर्म करने में विश्वास रखता है, जो चीजों को एक्शन में कन्वर्ट करता है, वहां क्या होता है, जहां ये दो लोग होते हैं, तत्र श्री विर्जयो भूर्तिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, अलग अलग शब्द है, वहां निश्चित रूप से क्या क्या होगा, निश्चित रूप से वहां नीति की स्थापना मिलेगी, वहां नीति होगी, वहां ऐश्वर्य होगा, वहां विजय होगी, वहां अलौकिक शक्ति होगी। यानी कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं जीत है, वहीं अलौकिक शक्ति है, और वहीं नीति भी है। संजय कहते हैं, ऐसा मेरा मत है, यानी कि मैं ऐसा समझता हूं। ये पूरी के पूरी गीता का फ्रेंड्स मुझे निचोड़ मालूम पड़ता है। यहां मैं अपनी ओर से व्याख्या के तहत, कृष्ण नो डाउट ज्ञान के प्रतीक है, विचारों के प्रतीक है, वो अर्जुन को समझाते हैं कि क्या करना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं, अगर आप विज्ञान की भाषा में बात करें तो जो कृष्ण है वो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन देते हैं, और अर्जुन क्या है, अर्जुन अपने आप में एक्शन एंड माइंड है, वो माइंड है। अगर अर्जुन माइंड है तो कृष्ण उसको दिशा दे रहे हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क को किधर काम करना चाहिए, और अर्जुन को आप एक्शन मान लें क्योंकि वो धनुर्धर भी है, तो वो एक्शन को बताते हैं कि तुमको किस दिशा में काम करना है। क्योंकि यदि एक्शन किया जा रहा है और गलत दिशा में किया जा रहा है तो कभी भी परिणाम सही नहीं हो सकते। यानी कि जहां ये दो बातें हैं, नंबर वन क्रिया एक्शन, या आप इसे माइंड कह लीजिए, और दूसरा डायरेक्शन, जहां ये दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट होंगी वहां फिर विजय निश्चित है। और देखिए इसमें एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति यानी कि हमें लगता है कि जैसे कुछ चमत्कार सा हो रहा हो, लेकिन वो चमत्कार नहीं है, वो बेसिकली डायरेक्शन और माइंड दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ऊर्जा पैदा होती है, जो ताकत पैदा होती है, वह उसका परिणाम है। हमें लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ऐसा संभव हो जाता है। और जब असंभव संभव हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं अलौकिक शक्ति। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।